welcome you.
यीशु मसीह के गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों के सहायक संस्था महासम्मेलन में आपका स्वागत करते हैं। मैं बहन जूली बी वेक हूँ, सहायक संस्था महान प्रधान। प्रधान थॉमस एस मॉनसन जो इस सम्मेलन के नेतृत्व हैं, उसके साथ है उसके सलाहकार प्रधान हेनरी बी आयरिंग और डीटर एफ उक्टोर। मेरे साथ है मेरे सलाहकार बहन सिल्विया एच ऑलरेड और बहन बाबरा थॉमसर। हम एल्डर रॉबर्ट डी हेल्स और नील बी एंडरसन को भी को जो बारा के प्रसिद्ध है और साथ में जवान महिलाओं और प्राथमिक की महाअध्यक्षक और सहायक संस्था जनरल बोर्ड के सदस्य भी आते हैं। इस सम्मेलन का प्रसारण 82 भाषाओं में किया जा रहा है 165 विभिन्न देशों राष्ट्र और क्षेत्रों की महिलाओं को। एक सहायक संस्था अध्यक्षता होने के नाते हमने व्यक्तिगत रूप से केंद्र और दक्षिण अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मेक्सिको और दक्षिण प्रशांत की बहनों के भेंट भी है। इस समय इनका संगीत सहायक संतों जो किर्न्स यूता के सेक की सम्मिलित एक गायक मंडली द्वारा उपलब्ध की जाएगी कैथी जॉली के निर्देशन में। गायक मंडली और सभा साथ हो जाएगी। आरंभ गीत के लिए काउंट योर ब्लेसिंग्स। प्रार्थना बहन शरण एल यू बैंक जो सहायक संस्था जनरल बोर्ड की है द्वारा दी जाएगी। हमारे प्रिय परमेश्वर, हम आभारी हैं इस कॉन्फ्रेंस सीजन के लिए कि हम सब साथ हैं. हम आभारी हैं हमें हमारे जनरल रिलीफ सोसाइटी के बातों को सुनने के लिए और हमारे प्रॉफिट प्रेजेंट मॉनसन की बातें के लिए. हम आभारी हैं हमारे रिस्टोर्ड गॉस्पल के लिए और उसकी शक्ति हमारी जिंदगी में. और हम आभारी हैं आपके बेटे जीसस क्राइस्ट के लिए. हम आशीर्वाद मांगते हैं कि जो बात करेंगे उनके पर और जो उनकी बातों को सुनेंगे कि वो कि आप हमारे दिलों को खुला रखेंगे कि हम साथ माताएं बहनें बच्चे साथ सुने. हम आभारी हैं जीसस क्राइस्ट की शक्ति में और हम ये सब कहते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन. धन्यवाद सिस्टर यूबैंक और हम आभारी हैं आपके सुंदर. सिस्टर स्मिथ की देहांत के लिए हम बहुत मिस करते हैं उन्हें. वो हमारी दोस्त थी और बहुत हमें शक्ति देती थी. उसने उसकी आखिरी शब्दों अपनी परिवार से कहा था. प्रधान मॉनसन ने आज शाम मुझे पहली भाषणकर्ता होने को कहा. मेरे टिप्पणियों के अंत में गायक मंडली गाएगी कैरी ऑन. इसके बाद सिल्वर एज ऑलरेड हमसे भाषण देगी. उसके पश्चात बहन बारबरा थॉमसन की भाषण देगी. बहन थॉमसन की टिप्पणियों के समाप्ति पर गायक मंडली और सुबह गाएगी मोर होलीनेस गिव मी.
यह सभा स्वर्ग पिता के सभी पुत्रियों के लिए एक उपहार है जो उनका मन और इच्छा सीखना चाहता है और जो योजना में अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं. इस पिछले वर्ष में मैंने आप में से कई से भेंट की है और प्रभावित हुई हूँ जब मैंने आपकी आंखों में देखा है. आपसे गले मिली हूँ, आपके साथ हंसी हूँ, आपके साथ रोई हूँ और आपके खुशी शोक और सफलता के बारे में सुनी हूँ. परमेश्वर की पुत्रियों के रूप में आप अनंत पीढ़ियों के लिए तैयार की गई है और हर एक के पास एक स्त्री का पहचान बनावट और जिम्मेदारी है. परिवार समझे या गिरजाघर और बहुमूल्य मुक्ति का योजना का सफलता आपकी विश्वास पर आधारित है. ओ प्रिय पुत्रियों, हम आपसे कितना प्रेम करते हैं. हम सब एक व्यक्तिगत मरणशील अनुभव में हैं. दो बहनें जिनसे मैंने भेंट किया वो दिखाते हैं कैसे विश्वसनीय रूप से जिया जा सकता है अलग अलग परिस्थितियों में. एक बहन ब्राजील में एक सुंदर घर में रहती है. उसका लाल पेंट का घर, लाल मिट्टी के आंगन, लाल ब्लॉक्स के दीवार से घिरे एक आश्रय है अब भारी दुनिया से. उसके चमकीले आंखों वाले बच्चों जानते हैं प्राथमिक के गीत कैसे गाया जाता है. उसके पति और उसने व्यक्तिगत बलिदान द्वारा मंदिर में बंधे ताकि उसके बच्चे एक बंधे हुए माता पिता के जन्मे हो. उसने मुझे बताया कि वो लगातार प्रभु से शक्ति और प्रेरणा के लिए प्रार्थना करती है. एक और बहन अकेले रहती है एक छोटे अपार्टमेंट में हांगकांग की एक इमारत के 80th मंजिल पर. उसके कुछ देह की कष्टी है मगर वो खुशहाल और आजादी है. वो अपने परिवार में गिरजाघर की अकेली सदस्य है. एक छोटे से सेल्फ पर उसके धर्मशास्त्र, उसके सहायक संस्था के पुस्तक और अन्य गिरजाघर की किताब है. उसने अपने घर में एक आत्मा से भरे आश्रय बनाए रखी है. हम जानते हैं कि बहनें कठोर या खतरनाक परिस्थितियों में रहती है. कुछ हमेशा भूखे रहती है और कुछ बहनों को दैनिक साहस पाकर आगे बढ़ना है विश्वास में निराशा और धोखों के बावजूद. क्योंकि हम इस धरती के अंतिम दिनों में रह रहे हैं, हर जगह बहुत संघर्ष के चिन्ह दिखाई दे रहती है. अंतिम दिन संत महिला की शक्ति, लक्ष्य और पद के बारे में झूठी बातें और ना समझी की बातें बहुत होती है. वर्तमान की झूठी बातें बतलाती है कि हम पुरुषों से कम महत्व की है, कि आमतौर पर हम में मधुर होती है मगर हम कुछ जानते नहीं है। मोमन धर्मशास्त्र बतलाता है क्या हो रहा है, क्योंकि सुनो, उस दिन वो मनुष्य की हृदय में क्रोध उत्पन्न करेगा और उन्हें भली बातें की विपरीत उजेदित कर देगा और दूसरों को वो सांसारिक सुरक्षा में विश्वास दिलाकर शांत कर देगा, जिससे वो ये कहेगा, जायन में सब कुछ ठीक है। हाँ, शैतान उनकी आत्माओं को ठगेगा और चतुराई के साथ अंधोलोक में ले जाएगा। इस प्रकार वो उनके कानों में फुसफुसाता है कि जब तक कि वो उन्हें अपनी भयंकर जंजीर से बांध नहीं लेता। अधिकार पाने बहाने बनाने बेपरवाही और लालच से बड़े हुए माहौल में परमेश्वर की पुत्रियां जो सावधान प्रार्थनाशील और प्रेरित नहीं होती और ज्यादा खतरे में होती है, दुर्बल स्त्रियां बनने में जिनके बारे में धर्मशास्त्र में लिखा है, जो पराई देवताओं पर अपना मन लगाती है। दुख के साथ जीवन के कठिनाइयों और दुनिया के मशहूर झूठी बातों के कारण कई बहनें झूठी बातों में सच्चाई से ज्यादा विश्वास करती है। ये कुछ खोज द्वारा पाया गया है कि कई बहनें जरूरी कार्य जैसे प्रार्थना और धर्मशास्त्र अध्ययन नहीं करती। अपनी पुत्रियों की देखरेख करने, शिक्षा देने और प्रेरित करने के लिए इन संकटपूर्ण समय में परमेश्वर ने भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ को अधिकार दिया कि वो गिरजाघर की महिलाओं को संगठित करेगा। सहायक संस्था का लक्ष्य है परमेश्वर की पुत्रियां को अनंत जीवन के आशीर्वाद के लिए तैयार करना, जैसे जैसे वो विश्वास और व्यक्तिगत धार्मिकता बढ़ाते हैं, परिवार और घरों को मजबूत करते और जाते हैं उन्हें ढूंढने को कष्ट में हो। सहायक संस्था हमारे काम को स्पष्ट बनाती है और हमें परमेश्वर की पुत्रियां के रूप में एक Relief Society is meant to be a compass and guide. आज की धार्मिक महिलाएं बहुत सारा व्यक्तिगत प्रतिकारण ढूंढती है, बेकावा से बच्चे, बुराई और आत्मिक विनाश का सामना करना और व्यक्तिगत विपत्तियों से ऊपर उठने के लिए अपने विश्वास को बढ़ाने से, परिवारों और घरों को मजबूत करने से और औरों को सहायता देने से। बहन अल्ब्रेट, बहन थॉमसन और मैंने प्रार्थना किया, उपवास किया, विचार किया और भविष्य वक्ताओं, देवदूत और प्रतिकर्ताओं से सलाह ली है जाने के लिए कि परमेश्वर क्या चाहता है हम करें, उससे उसके पुत्रियों को सहायता देने के लिए वो शक्तिशाली रहे उन विपत्तियों के सामने जो धरती के रहने वाले पर आने वाली है। एक जवाब आया है कि गिरजाघर की बहनों को सहायक संस्था के इतिहास से जानने जाना और सिखाना चाहिए। सहायक संस्था के इतिहास को समझना विश्वासी महिलाओं के खुद की पहचान और योग्यता को मजबूत करती है। इसके कारण गिरजाघर के लिए सहायक संस्था का एक इतिहास तैयार किया जा रहा है और अगले वर्ष उपलब्ध रहेगा। पहले से ही सहायक संस्था इतिहास पर खास ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि लिहोना और एंजाइन के शिक्षक संदेश भेंट के पन्नों पर। क्योंकि हमने सहायक संस्था के इतिहास का अध्ययन किया है, हमने सीखा कि प्रभु का दृष्टि और सहायक संस्था का लक्ष्य एक रविवार के सोए हुए के सभा का फल नहीं था, उनके मन में एक मिलाव का संगठन या खास दिलचस्पी वाले मनोरंजन दल से ज्यादा कुछ था। वो चाहता था कि सहायक संस्था उनके लोगों को आगे बढ़ाए और उन्हें मंदिर के आशीर्वादों के लिए तैयार करे। उसने इस संस्था को आयोजित किया ताकि वो अपने पुत्रियों को अपने कार्य में लगाए और उनकी मदद मांगे, अपने राज्य को बनाए और जायोन के घरों को मजबूत करने के लिए। विश्व भर की अच्छी महिलाओं के बीच एक भूख है अपनी पहचान, गुण और महत्व को जानने के। सहायक संस्था के इतिहास का अध्ययन करना बतलाता है और जाहिर करता है कि हम कौन है उद्धारकर्ता यीशु मसीह के चेलों और प्रशंसक के रूप में। प्रभु ने अपने पहला महिला नेता चुना और प्रतिकारण में उससे कहा, एमस स्मिथ को उसने अपनी पुत्री कहा और उसे बताया कि जो भी उसके सुसमाचार को अपनाएंगे उनके राज्य में मेरा पुत्र और पुत्रियां है रहेंगे। सहायक संस्था का इतिहास हमें सिखलाता है कि स्वर्ग के पिता अपने पुत्रियों को जानते हैं, वो उनसे प्रेम करता है, उससे उन्हें खास जिम्मेदारियां दी है और उसने बताया कि और उनको मार्ग दिखलाया उनके मरणशील मिशन के समय। और आगे सहायक संस्था का इतिहास महिलाओं के पढ़ को ऊंचा करता और मान्यता देता है और दिखाता है कि वो विश्व ने पुरोहित नेताओं के साथ मिलकर कार्य करते हैं। हमारा इतिहास हमें सिखलाता है हमें क्या करना है अनंत जीवन के आशीर्वादों को पाने की तैयारी करने के लिए। सहायक संस्था की एक संगठन के रूप में जिम्मेदारी है रही है बहनों की शक्ति को जायन की वोट्स और शाखाओं में आयोजित करना। सहायक संस्था की सभाओं, भेंट वार्ता, शिक्षाओं को प्रचार द्वारा और उनके संगीत कार्यों द्वारा परमेश्वर के पुत्रियों को सिखलाया जाता, देख रेख किया जाता और प्रेरित किया जाता प्रभु के कार्य और राज्य के उनके जिम्मेदारियों में। एक वर्ष पहले इस सभा में सहायक संस्था सभाओं के लिए कुछ नीतियां दी गई थी। हम खुश हैं ये बतलाने के लिए कि कई वार्ड और शाखाओं में विश्व भर में सहायक संस्था अध्यक्षताओं ने और बहनों ने इन नीतियों को अपनाया और उसके साथ जुड़ लक्ष्य को भी ये देखा कि सहायक संस्था का इतिहास, लक्ष्य और कार्यों में बदलाव आया है। एक खुशी की बात रही है, हमने सहायक संस्था सभाओं के आत्मा, सम्मान, पहचान और उपयुक्तता में वृद्धि देखी है, जबकि बहनों की सभी सभाओं को अब सिर्फ वो जो है कहा जाता और प्रकाशित किया जाता है। सहायक संस्था सभाएं, हम विश्वास और व्यक्तिगत धार्मिकता, परिवारों और घर की मजबूती और सहायक संस्था बहन द्वारा सहायक संस्था सभाओं में और ज्यादा सहायता दी जा रही है, मैं बढ़ती देख रही हूँ। हमेशा से सहायक संस्था की जिम्मेदारी रही है उद्धार के कार्य में भाग लेने का। पुनर्स्थापित गिरजाघर के शुरुआत से बहाने वाले वहाँ पहले, आखिरी और हमेशा रही है दैनिक जीवन के घटनाओं में कुछ कार्य करने के लिए। सहायक संस्था से बहने जानती है सेवा प्रदान करने, प्राथमिक, जवान महिला, रविवार पाठशाला और अन्य कार्यों में, और वो उभरती पीढ़ी के लिए उज्याला और शुद्धता का प्रकाश है। हम इतिहास से ये भी सीखते हैं, भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ ने सहायक संस्था सभाओं का इस्तेमाल किया बहनों को उनकी जिम्मेदारी और मंदिर की तैयारी पर सिखलाने के लिए। आज भी परिवार इतिहास और मंदिर कार्य सहायक संस्था का मुख्य उद्देश्य में है। हमारे इतिहास लक्ष्य की हमारी समझ महिलाओं की मदद करती है अच्छी तरह प्राथमिकता देने के लिए, ताकि वो उस पर पैसा ना खर्च करे जो कोई मूल्य का ना हो, मेहनत उस पर जो संतोषी नहीं देता। सहायक संस्था की हमेशा से जिम्मेदारी है रही है वो करने के लिए जो देवदूत पॉल ने सिखलाया, ताकि वो जवान स्त्रियों को सिखलाए गंभीर, साधारण और पवित्र रहने के लिए, और उन्हें जो विवाहित है को सिखलाए कि वो अपने पति और बच्चों से प्रेम करे और अपने घरों की देखभाल करे। सहायक संस्था का इतिहास हमें सिखलाता है जरूरी चीजों की परवाह करे के लिए जो हमें बचाएगी और शुद्ध करेगी, और वो चीजें जो जरूरी है हमें आत्मनिर्भर और उपयोगी बनने के लिए प्रभु के राज्य में। हमारे इतिहास की शुरुआत से एक विषय रहा है कि बहनें जो पवित्र आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल करती है वो प्रभु की प्रेरणा द्वारा अपना जीवन व्यतीत करती है। सहायक संस्था का इतिहास एक उत्साह भरी कहानी है, मजबूत विश्वासी लक्ष्यपूर्ण महिलाओं की। प्रभु के पुण्य स्थापित गिरजाघर का भाग होने से सहायक संस्था अब 170 देशों में पाया जाता है। प्रभु के गिरजाघर में हर बालिक महिला को गंभीर और जरूरी जिम्मेदारियां दी जा सकती है। गिरजाघर में जवान लड़कियां और जवान महिला लक्ष्य बनाना सीखती है फेथ इन गॉड और पर्सनल प्रोग्रेस कार्यक्रम के जरिए, जो उनका ध्यान मंदिर और उनके भविष्य की जिम्मेदारियों की और केंद्रित करती है। सहायक संस्था में वो मंदिर के आशीर्वाद और अनंत जीवन की ओर बढ़ती जाती है। अपना विश्वास और व्यक्तिगत धार्मिकता को बढ़ाकर परिवारों और घरों को मजबूत करके और उन्हें ढूंढना और मदद करना जो जरूरत में हो। विश्वासी बहनें ऐसा करना सीख जाती है बहुत कम प्रशंसा या सम्मान से उस कार्य के लिए जो वो करती है। सहायक संस्था सफल होता है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षण द्वारा, जिससे कहा कि जब हम अपना ध्यान ये भेद रूप से दें, हमारा पिता जो स्वर्ग में है, जो गुप्त में देखता है, हमें प्रतिफल देगा। सहायक संस्था के इतिहास और कार्य के जरिए हम एक महान विश्व भर के जवान और वृद्ध, धनवान और गरीब, पढ़े लिखे या अनपढ़, अविवाहित और विवाहित, मजबूत और अधिक परमेश्वर के पुत्रिया के बनप्पा से जुड़े हैं। अंत में इतिहास का मोल उतना उसके तारीख, समय और स्थानों से नहीं होता, वो अनमोल है क्योंकि वो हमें सिद्धांत, लक्ष्य और तारीख देता है आजमाने के लिए, और वो हमें जाने में मदद करते हैं कि हम कौन हैं। सहायक संस्था जब वो एक प्रेरित तारीख से कार्य करती है, विश्वास, आशा और उदारता दर संदेह और स्वार्थीपन के साथ ले लेता है। जब हम प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाते हैं, सहायक संस्था के इतिहास लिखता रहेगा विश्वासी बहनों के द्वारा विश्व भर में। मैं अपनी गवाही देती हूँ स्वर्ग पिता और उनके पुत्र यीशु मसीह की वास्तविकता पर। भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ के जरिए सुसमाचार हमारे पहचान और लक्ष्य का अच्छा सूचना धरती पर पूर्ण स्थापित किया गया था। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
grateful to be part
of this. मैं बहुत खुश हूँ दुनिया भर के विश्वासी महिलाओं के इस सभा में भाग लेने के लिए. मैंने आप में से हजारों को अन्य देशों में भेंट किया है. आपके विश्वास और भक्ति से मुझे शक्ति दिया. आपके अच्छाई और प्रतिज्ञा सुसमाज की उदाहरण से मुझे प्रेरित किया है. आपके शांत की सेवा के कार्य और आपके गवाही के शब्दों और शांत से ने मुझे विनम्रता दिया है. मैं आज की रात आप सब से वही सवाल को पूछूंगी जो मैंने आप कईयों से बातों में किया. आपको क्या मदद करती है स्थिर और अधिक के चुनौतियों के दिन झेलने में जो आपके विश्वास को जांच करती है? आपको क्या मुसीबत और दुख के समय में बनाए रखती है? आपको क्या मदद करती है अंत तक झेलने में और मसीह के सच्चे चेला बनने में? कुछ जवाब को आपने मुझने दिया था यहाँ शामिल है. आपके ज्ञान जो प्यार और परवाह से स्वर्ग के पिता ने आपको दिया है. आपको आशा कि यीशु मसीह के महान बलिदान से सारे आशीर्वादों के विश्वास में आपकी पाप से मुक्ति के योजना का ज्ञान. आज का मेरा संदेश इस विश्वास के वचन से बढ़कर आएगी जो आपके दिल में है. रोमन्स में कहा गया, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं. पहली बार मुझे पूरे विश्वास से लगा कि स्वर्ग के पिता मुझे जानते हैं, मुझे प्यार करते हैं और मुझे परवाह करते हैं जब मैंने बैप्टिज्म की पानी के अंदर गए 15 की उम्र में. उससे पहले मुझे पता था कि परमेश्वर है और यीशु मसीह दुनिया का उद्धार करता है. मैं उन पर विश्वास और प्यार किया मगर मैंने उनके प्यार और परवाह को कभी महसूस नहीं किया अलग से उस दिन तक जब मुझे खुशी से मौका मिला कि मैं बैप्टिज्म का वादाओं के कारण मुझे ये समझ आया कि कितना बड़ा चमत्कार हुआ कि प्रचारों ने मुझे प्यार और पराया जबकि वहाँ कुछ ही प्रचारों 2 मिलियन लोगों में. तब मैंने जाना कि स्वर्ग के पिता मुझे जानते और प्यार करते थे कि एक ऐसे तारीख से कि उसने मेरे घर पर प्रचारकों को भेज दिया. परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है. ये सच्चा है कि क्योंकि हम उसके बच्चों हैं और वो चाहते हैं कि हम सब खुश और अनंत खुशियों को पाएं. उससे कार्य और उसका महिमा है जो अमर और अनंत खुशियों को पा सके. इसलिए उसने अनंत खुशियों की योजना को हमारे लिए प्रदान किया. हमारी जिंदगी का मकसद है कि अनंत जीवन और अनंतता को अपने लिए पाए और दूसरों को भी ये करने में मदद करें. उसने इस दुनिया को बनाया कि हम मनुष्यों की दही को पा सके और हमारे विश्वास को परखा जा सके. उसने हमें चुनाव का अनमोल उपहार दिया जिससे कि हम उस रास्ते को चुन सकें जो कभी ना खत्म होने वाली खुशियों देती हैं. स्वर्ग के पिता का पाप से मुक्ति का योजना हमारे और मेरे लिए है. वो उसके सभी बच्चों के लिए है. तब परमेश्वर ने आदमी को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया. अपने अनुसार परमेश्वर ने उसने उत्पन्न किया आदमी और औरत कर और परमेश्वर उनको आशीष दी और परमेश्वर ने उसे कहा फल फूल लाओ और पृथ्वी में बांट जाओ और उसने उन्हें आज्ञा दिया कि वो अपने ईश्वर अपने परमेश्वर की पूजा करे और एडम ने अपने आज्ञा का पालन किया जो उसने ईश्वर से के साथ बनाए. एडम और ईव ने बच्चों को जन्म दिया और वो योजना आगे बढ़ती रही. मैं ये जानती हूँ कि हम सब के पास महत्वपूर्ण और आवश्यक भूमिका है. परमेश्वर की पुत्र की तरह उसने अपने पुत्रियों को पवित्र गुण दिया गया है ताकि उसके कार्य को आगे बढ़ाया जा सके. परमेश्वर ने महिलाओं को बच्चों को जन्म और पालने का पवित्र कार्य दिया है और कोई भी कार्य जरूरी नहीं है. इससे ये एक पवित्र नियुक्ति है. सबसे मुख्य ऑफिस एक महिला के लिए अनंत परिवारों को बनाने की और अपने पति के साथ मिलकर. मैं जानती हूं कि आप में से कुछ महिलाओं को अभी शादी या बच्चों का आशीर्वाद नहीं मिला. मैं बतलाती हूं कि आगे चलकर आपको सब वो आशीर्वाद मिलेंगे जो विश्वासियों को वादा दिया गया है. आपको जरूरी है मसीह में स्थिरता विश्वास रखते हुए आगे बढ़ने के लिए आशा की अखंड ज्योति में और सदा आगे बढ़ने जाए. अनंत चित्र में वो आशीर्वाद जो नहीं है सिर्फ एक छोटा समय है और साथ में आपको शादीशुदा होने जरूरी नहीं है इस वादे और परिवारों मित्रों और पड़ोसियों के पोषण को निभाने के लिए. आपके उपहारण योग्यता और गुण और आत्मिक शक्ति राज्य को बनाने के लिए बहुत जरूरी है. ईश्वर इस मूल्य कार्य को करने के लिए आपकी इच्छाओं पर निर्भर होता है। प्रभु ने कहा है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देखो, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खुद कर बनाया है। तेरा शब्द सदा मेरी दृष्टि के सामने बनेगी। वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके आशाओं और नाराजियों को जानते हैं। वो आपको भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपके दर्द और पीड़ा उसके सामने हर समय है। परमेश्वर के प्यार का सबूत यह था कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए बलिदान कर दिया, हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के लिए, जो मैं हम पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उद्धारकर्ता ने कहा, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसे ही मैंने तुझसे रखा। यीशु मसीह की बलिदान हमें ये दिखलाती है कि वो अपने पिता और हम सब से कितना प्रेम करते हैं। आइज़या ने उद्धारकर्ता ने झीलने को बुलाया, उसने हमारे दुख झीला और हमारे डर को ले लिया। हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्मों के कारण कुचला गया कि उसके दर्द से हम ठीक हो जाएंगे। प्रभु ने खुद कहा, मैं परमेश्वर ने ये सब तुम सब के लिए झीला है कि तुम ना झीलो। मृत्यु की जंजीर को तोड़ा है और सभी मनुष्यों को पुनर्जीवन पाने के लिए संभव किया है। यीशु मसीह ने अपने हमारे पापों के लिए झीला और मर गया ताकि पश्चाताप के विधान का सम्मान करने के लिए, ताकि अगर हम पश्चाताप करें जो हमें झीला ना पड़े। हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं जब हम विश्वास को उस पर रखते हैं। वो बचने वाले धर्म विधि के चिन्ह है, वो वादे हैं जो हम बनाते हैं। उसके नियम और आज्ञा वादा की आज्ञा को बनता है परमेश्वर और उसकी शक्ति को हमारे विश्वास से। हमारी विश्वास और यीशु मसीह में स्थिर विश्वास हमें हिम्मत और भरोसा देगी जो जरूरी है जिंदगी की चुनौतियों को पार करने के लिए। जब मेरी पति को 1992 में पैराग्वे असुंसियन मिशन को संचालन करना था, हमने एक चित्राई हुई आबादी, गर्मी और अधि सूखा न निचली जमीन क्षेत्र पैराग्वे के एक शका का सम्मेलन में भाग लिया। हमने 4 घंटे एक कच्चे रास्ते और 7 घंटे और भी कच्चे रास्ते पर सफर किया। वो सनक और खुश सफर कर ही जल्दी भूल गए जब मैंने मिस्त्रों के खुश और स्वागत भरे सदस्यों से मिला। हुलियो रेगोर्स एक जवान शका था प्रधान था और वो और उसकी पत्नी मार्गरेटा ने हमसे अपने मंदिर के सफर के अनुभवों को बताया। उस समय तो सबसे नजदीक का मंदिर ब्यूनस आयर्स टेम्पल अर्जेंटीना में था। मिस्त्रों के 27 घंटे लगता था एक बगल से मंदिर को पहुंचने में और वो बहुत ठंड का बीच का समय था, मगर बहुत बलिदान के बाद वो मंदिर को पहुंचे और साथ में जोड़ गए अनंत परिवार की तरह। वापस आने के समय वो 2 बच्चे बहुत बीमार हो गए और मर गए। उन्होंने उन्हें बीच में ही दफना दिया और घर वापस बिना बच्चे के पहुंचे। वो उदास और अकेले थे, मगर आश्चर्यजनक रूप से दिलासा और शांति महसूस किया। उन्होंने अपने अनुभवों को कहा, हमारे बच्चे हमारे साथ ईश्वर के घर में बंधे गए थे। हम जानते हैं कि वो हमारे पास वापस होंगे स्व मुक्ति में। इस ज्ञान ने हमें शांति और दिलासा दिया। हम उन वादाओं को सही और विश्वास तरीके से निभाना होगा जो हमने मंदिर में लिए थे, और फिर हम उनके साथ मिल सकेंगे। हम किस तरह अपने विश्वास और आशा को बढ़ा सकते हैं पैराग्वे के विश्वासी सदस्यों की तरह? हम किस तरह से अपने विश्वास के वर्णन को मजबूत कर सकते हैं, जो मैंने बार बार आप कईयों से सुना है कि मैं परमेश्वर के प्यार में विश्वास करता हूं, अपने लिए जानती हूं कि मैं उसके आशीर्वादों को प्राप्त करूंगी और समझती हूं अपने पाप से मुक्ति की योजना के बारे में उद्धारकर्ता यीशु मसीह से और अपने जरूरी भाग को उसकी योजना में। मैं वो 4 चीजें लाऊंगी जो से मुझे मदद मिली, प्रार्थना, धर्मशास्त्र की पढ़ाई, आज्ञा और सेवा। प्रार्थना ही एक मार्ग है जो स्वर्ग के पिता से हमें वार्तालाप करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने विश्वास को उस और उसकी शक्ति मानते हैं कि हम आशीर्वाद देंगे। आलमा ने हमें पढ़ाया है कि अपने सभी कामों में प्रभु के राय रो और वो तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारा निर्देशन करेगा। रात को जब तुम विश्राम करो तब प्रभु का स्मरण करो जिससे कि वो सोते समय तुम्हारी रक्षा करे, और जब भोर को सुबह को उठो तब परमेश्वर की प्रार्थी तुम्हारा हृदय कृतज्ञता में भरे रहे। मैं स्वर्ग के पिता की योजना को मानती और समझती हूँ कि वो हमें मदद करते हैं जाने में कि हम कौन हैं और हमें क्या बनना चाहिए। प्रभु ने आज्ञा दिया, तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढो क्योंकि समझते हो कि उनसे अनंत जीवन तुम्हें मिलेगा। ये पर हर महिला को धर्मशास्त्र को पढ़ने की बहुत जरूरत है। जब हम धर्मशास्त्र की सच्चाई को ठीक परमेश्वर के कार्यों को करने में हर दिन का प्रार्थना और धर्मशास्त्र की पढ़ाई हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा की प्रभावों और शक्ति को भर देता है। प्रभु ने कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को पालन करो। हमारे विश्वास पर आज्ञा हमें मदद करेगी सीखने में ईश्वर के कार्य और हमारे दिल को बदलाएंगे। हमें धर्मशास्त्र और वधान में ये सलाह दी गई है कि हम उन वादाओं पर किए रहें जो हमें किया है। अगर हम उसके आज्ञाओं को पालन करते रहेंगे हमें सच्चाई का ताज मिलेगा। सुसमाचार को निभाने से यीशु मसीह में हमारे विश्वास और आशा का पोषण होता है। हमारे पास कई मौके उसकी सेवा के लिए। हर एक बहन को कहा गया है कि हमारे बीच और अगल बगल में ढूंढ कर गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। गरीब और जरूरतमंद में आत्मिक और गंभीर जरूरतें भी शामिल। हर एक क्या कार्य करने को मिला मेरे हो को बचाओ, जो परिवार के इतिहास पर ये मंदिर के कार्य को करने से मिल सकता है। हमें यह आज्ञा है कि हम धर्मशास्त्र को दूसरों से बांटें, और वहाँ पर कई कार्य हैं जिसे हम प्रचारक के कार्य को कर सकते हैं। ये प्रभु ये चाहता है कि जो ताकतवर है वो कमजोर को मदद करे, और तुम्हारी अपनी विश्वास और जब तुम दूसरों को मदद करोगे और उसके बच्चों को की परवाह करोगे। मैं जानती हूँ कि स्वर्ग का पिता अपने हर बच्चे से सही तरीके से प्यार करते हैं एक जैसा, और हमारी पूरी कोशिश है जो वो चाहते हैं हमसे और हर एक से जो जरूरी है राज्यों को बढ़ाने के लिए। यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है। मैं गवाही देती हूँ कि अगर विश्वास से अनंत तक रहेंगे हम हर स्वर्ग के पिता के आशीर्वाद अनंत जीवन और मसीह के द्वारा अनंत तक को पाएंगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
My dear sisters, what a blessing it is.
मेरे प्यारी बहनों, कितनी आशीर्वाद है तुम्हारे साथ रहने में, तुम्हारे शक्ति और प्यार प्रभु के महसूस करने के। धन्यवाद उस प्यार और दया के लिए जो तुम दूसरों से बातें हो हर समय। नावू में हाल ही के दिनों में सहायक संस्था की महिलाओं घर घर जाती थी, एक दूसरे की देखरेख, निर्धारित जरूरतों के लिए भोजन को लाती थी, बीमारों की मदद करती थी और हर एक महिला और अपने परिवार के लिए दया दिखलाती थी। धर्मशास्त्र कहता है, और उन पर जो संख्या में है दया करो। जब मैं इस धर्मशास्त्र को सोचती हूँ और उसके मतलब को, मेरे ख्याल उद्धारकर्ता और कई बार धर्मशास्त्र की ओर जाती है जो बतलाता है प्यार और दयालुपन जो मसीह के पास था हम सब के लिए। नए नियम में हम पढ़ते हैं कि मसीह पर तरस आया लोगों के लिए जब वो उनके जरूरतों को पूरा कर रहा था। उस पर दया आया जब उन्होंने देखा कि वो भूखे हैं और उन्होंने उन्हें भोजन दिया। दया का मतलब है दूसरों के लिए प्यार और क्षमा को महसूस करना। इसका मतलब है कि दूसरों के लिए दया और पीड़ा को दूर करने की चाहत। इसका मतलब है कि दूसरों को दयालुता और कोमलता दिखलाए। उद्धारकर्ता ने हमें वही करने को कहा है जिसका नमूना उसने हमें दिखाया है, एक दूसरे की भोज को ढूंढने में सहायता देना, और जो दुख में रोते हैं उनके साथ दुखी होने को तैयार हो, जिनको संतवाना की आवश्यकता है उन्हें आश्वासन दे। विजिटिंग टीचिंग के समय महिलाओं को मौका मिलती है कि वो देखे, शक्ति प्रदान करे और एक दूसरे को पढ़ाए। लगभग उसी तरह जैसा एरोनिक पुरोहित के शिक्षक को जिम्मेदारी मिलती है गिरजाघर का हमेशा ख्याल करे और फिर उनके साथ रहे और उनको शक्ति प्रदान करो। बहन बेक ने हमें याद दिलाया है क्योंकि हम यीशु मसीह के उदाहरण और कार्य को करते हैं हम उसके पवित्र कार्य को मूल देते हैं प्यार करने से सेवा समझने पढ़ाने और उसके निमित्त देखरेख करने के लिए। आज मैं दो चीजों के बारे में बात करना चाहती हूँ वो आशीर्वाद जो तुम दूसरों के लिए लाते हो विजिटिंग टीचिंग द्वारा और दूसरा वो आशीर्वाद जो तुम सेवा में पाते हो। हाल ही में मैंने अलास्का में कुछ महिलाओं से मिली वहाँ पर लगभग 12 महिलाओं थी एक कमरे में और 6 और शामिल हुए स्पीकरफोन द्वारा अलास्का के कई शहरों और नगरों से। इनमें से कई महिलाओं गिरजाघर की इमारत से 100 मीलों से भी ज्यादा दूरी पर रहती थी। सभी महिलाओं के पास व्यक्तिगत रूप से जाने के लिए उन्हें हवाई जहाज नाव की या बहुत दूर तक सफर करने के लिए मोटर की जरूरत पड़ेगी। सही है कि समय और खर्च जो घरों की दौरान होती है वो असंभव है फिर भी इन बहनों ने एक दूसरे के करीब महसूस किया क्योंकि वो एक दूसरे के लिए हर समय प्रार्थना कर रही थी। वो एक दूसरे के साथ रही फोन इंटरनेट और चिट्ठी के द्वारा भेंट करती थी। उन्होंने प्यार के साथ सेवा किया क्योंकि उन्होंने वादों को बनाया था प्रभु के साथ और अपने बहनों को आशीर्वाद और शांति देने की इच्छा किया। कोंगो में दो विजिटिंग टीचर्स बहुत दूर चले एक महिला और उसके बच्चे को मिलने के लिए। इन बहनों ने प्रार्थना के दौरान एक संदेश को तैयार किया और जानना चाहता था कि वो उसे उस प्यारी महिला की जिंदगी में कैसे बदलाव ला सकती है। वो महिला खुश हो गई उनके दौरे के देखकर। उसके लिए उनका दौरा एक संदेश था जो स्वर से सिर्फ उसे मिला। जब दौरा करने वाले शिक्षक उसे उसके विनम्रता के घर पर मिलने गए बहने उसकी परिवार और दौरा करने वाले शिक्षक सभी उपहार उठे और आशीर्वाद को प्राप्त किया। लंबी सफर खर्च और सुरक्षा के कारण हर महीने महिला कुछ स्थान पर गिरजाघर में आसान नहीं मगर व्यक्तिगत प्रकट होने की कार्य की शक्ति से बहनों जो एक दूसरे के प्यार को सच्चाई से ढूंढती और देखती और एक दूसरे को मदद करती है सही रास्ते को पाती है प्रभु से इस कार्य को करने के लिए। प्रेरी सहायक संस्था की प्रधान अपने बिशप के साथ परिषद करते हैं और प्रार्थना के दौरान दौरा करने वाले शिक्षक को सौंपा गया काम को देखने में मदद करती है और सभी वार्ड की महिलाओं के लिए देखरेख करती है जहां और ज्यादा जरूरत समझते हैं जिम्मेदारी की देखरेख में और ज्यादा निवास से आत्मा पर निर्भर हो सकते हैं हमारे प्रयास को मार्गदर्शन देने के लिए। मैं ही हूं जिसने कई महिलाओं को हर महीने में दौरा किया है और फिर खुशी से बतलाया सहायक के चीन के साथ मेरी शिक्षा का दौरा समाप्त हो गई। अच्छा वह भाग तो मैं विवरण करती हूँ कि मैंने किया है मगर वह सिर्फ कारण है मुझे करने का कितना शर्म की बात है। शिक्षक के द्वारा करने की सुंदरता 100% महीने की विवरण में देखने से नहीं होती। शिक्षक के दौरा करने की सुंदरता जिंदगियों को बदलने देखकर आंसू पोंछकर बहते हुए गवाही मनुष्य के प्यार परिवार शक्तिशाली होने से मनुष्यों खुश होने से भूखे को भोजन मिलने से बीमारियों को देखने जाने से और जो शोक मनाते हैं शांति मिलती है। सही में शिक्षा के दौरान पूरी होती नहीं क्योंकि हम ध्यान रखते हैं और हमेशा शक्तिशाली बनाते हैं। कई महिलाओं ने विवरण किया है उनके वापस गिरजाघर की गतिविधि में आने का कारण था कि विश्वासी दौरा करने वाले शिक्षक एक के बाद एक महीने जाते थे और उनकी देखरेख किया उन्हें बचाते हुए प्यार करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। कभी संदेश कभी कभी संदेश सबसे जरूरी चीज है जो तुम विशिष्ट दौरा पर बांटते हो। कुछ समय सबसे जरूरी आशीर्वाद तुम्हारे दौरा पर होगी कि सिर्फ सुनो, सुना, सहारा, समझ और ठीक करना करना लाती है। फिर दूसरे समय तुम्हें जरूरी होगा कार्य को करने के लिए और घर पर काम को करने के लिए या रोते हुए बच्चे को शांत करने के लिए। मैंने कई बार कहा है, ओ मुझे अपनी शिक्षा के दौरा को करनी है। उस समय मैं भूल गई थी कि मैं महिलाओं को दौरा और शिक्षण दे रही थी। उसी समय मैं उससे एक भोज की तरह देख रही थी, ना तो आशीर्वाद की तरह। मैं सच्चाई के साथ कह सकती हूँ कि जब हम शिक्षा से दौरा करने गए, मैंने हर समय अच्छा महसूस किया। मैंने ऊपर उठा, प्यार और आशीर्वाद को पाया उस बहन से ज्यादा जिससे मैं दौड़ कर रही थी। मेरे प्यार बढ़ गई, मेरी सेवा करने की चाहत बढ़ गई और मैं देख सकती थी उस सुंदर रास्ते को जो स्वर्ग पिता ने हमारे लिए बनाया था। और दूसरे आशीर्वाद जो दौरा करने वाले शिक्षक को मिलती है कि हम उन्हें जान सकते हैं और उनके दोस्त बन सकते हैं जिन्हें हम पहले से अच्छी तरह से नहीं जानते थे। मैंने अपने कुछ सबसे विनम्रता के अनुभव को खुशी से और आत्मिक अनुभव को अपनी जिंदगी के जब मैंने अपनी वार्ड और दुनिया के इर्द गिर्द के महिलाओं के घरों में बैठी थी। हमने एक दूसरे को सुसमाचार को सिखलाया, हमने साथ में रोया, साथ में हंसा और साथ में मुसीबतें को झेला और मैं ऊपर उठी और आशीर्वाद को पाया। एक शाम महीने के अंत में मैंने तैयार कर रही थी शहर को छोड़ने के लिए और किसी भी बहनों को द्वारा नहीं किया था। शाम को देर बाद मेरे पास कोई भी कार्य नहीं था, मेरे पास कोई साथी नहीं था, मगर मैंने फैसला किया कि यह जरूरी था कि मैंने अपने मित्र को दौरा करूं। जूली की बेटी एशली एक नर्म हड्डी की बीमारी के साथ जन्म लिया था। जब एशली 6 साल की थी, वो बड़ी छोटी थी और वो कुछ नहीं कर पाती सिवा अपने हाथों को हिलाने और बोलने के सिवा। उस व्यस्त रात को जब मैंने घर पहुंचा, जूली ने मुझे अंदर बुलाया और एशली ने आवाज दिया कि वो मुझे कुछ दिखाना चाहती है। मैं अंदर आई और नीचे मेज पर एशली के एक बगल बैठ गई और उसकी माँ दूसरे बगल। एशली ने कहा, देखो मैं क्या कर सकती हूँ। फिर अपनी माँ के थोड़ी मदद से एशली अपने ओर मुड़ गई और फिर वापस। उसे यह करना कि ये 6 साल लग गया था। जब हमने थपोड़ी पीटा और खुशी हुए और हंसे और इस खास अवसर पर साथ रोए, मैंने स्वर्ग पिता को धन्यवाद दिया कि मैंने दौरा करने गई थी और इस बदले से कार्य को देखने की अवसर मिला। भले वो दौरा कई साल पहले था और प्यारी एशली मर चुकी थी, मैं हर समय बहुत खुश हूँ कि मेरे पास उसे के साथ एक खास अनुभव है। मेरी अपनी माँ, प्यारी माँ, एक आश्चर्य और समर्पित दौरा की शिक्षक थी कई सालों के लिए। वो हर समय उन रास्तों को सोचती थी कि जिससे वो आशीर्वाद दे सके परिवारों को वहाँ जहाँ वो दौरा को जाती थी। उसने अपने व्यस्त ध्यान महिलाओं के बच्चों पर डाला जिन्हें वो दौरा करने गई थी, परिवारों को शक्तिशाली बनाने के लिए। तुम मेरी दौरा करने वाली शिक्षक हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सभी अनुभव द्वारा को लेकर अच्छी और आश्चर्य नहीं होती। कभी कभी वो मुश्किल है उन घरों में जहाँ तुम बुलाया नहीं जाते या जहाँ पर बहुत मुश्किल है एक बहन से मिलना जिसके पास समय नहीं। वहाँ पर कुछ ऐसी बहन से अच्छी रिश्ता बनाना कुछ समय से ले सकता है, मगर पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा रास्ते को ढूंढने के लिए और उसे देखेंगे और शक्ति देने के लिए। प्रधान मोनसन एक अध्याप व्यापक है देख रेख करने में, जैसे कि उद्धारकर्ता ने किया था। वो हर समय दूसरों के दौरा और मदद करते थे। उसने कहा, हम उनसे घेरे हुए हैं जिन्हें हमारी कार्य की जरूरत है। हाँ, प्रभु की हाथ है इस धरती पर इंसान के समय में अपने बच्चों की सेवा और अपने उपहार उठाने में। वो हम सब पर निर्भर है। कोई भी उसके कार्य को सहारा नहीं दे सकता, बल्कि विम्रता, प्यार, विश्वास, आशा, दान और सभी चीजें में बराबर जो कुछ उससे भरोसे के साथ देखने को सौंपा है। हमें प्यार और दया और दूसरों में अंतर करना चाहिए जिन्हें हम विजिट करते हैं। बहनों, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम पिता और यीशु मसीह के प्यार को महसूस करोगे। मैं बयान देती हूँ कि परमेश्वर जीवित है। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
बहनों,
हम जानते हैं कि आपके समय पर भारी दबाव है कि और हम आज शाम संचय दिल से तुम्हारे उपस्थिति के लिए आभारी हैं। हम सहायक संस्था बहनों और नेताओं को कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जो अपने जीवन को इस महान कार्य के लिए समर्पित करते हैं। अब हम प्रधान थॉमस एन मॉनसन हमारे प्रिय भविष्यता के भाषण से सम्मानित होंगे। प्रधान मॉनसन के टिप्पणियों के बाद गायक मुंडली हमारा अंतिम गीत गाएगी, द स्पिरिट ऑफ द गॉड। बहन मार्शा जी बैग जो सहायक संस्था जनरल बोर्ड की सदस्य फिर प्रार्थना बोलेगी।
I was in a meeting once when the speaker stood at the pulpit and never seen an audience like this. He looked left, he looked right, and said thank you and sat down. He left all the time to me. You're a splendid sight to behold. I'm a man of memories. I think back of my youth, of the visiting teachers that came to our home. I think of my mother trying to...
मैं अपनी माँ की याद करती हूँ, जो हमारे visiting teacher को जो हमें visit करते थे.
I remember being
मैं
called...
याद करता हूँ जब मैं बिशप को नियुक्ति मिली और हमारे विडोज और बूढ़ियों को देखभाल करने के लिए. मैं याद करता हूँ क्रिसमस के दिन घर ना होने के लिए, जहाँ मेरी बीवी है, और उसे समझाने के लिए कि मैं घर नहीं हो सकता क्योंकि मैं दूसरे बूढ़ियों को विजिट कर रहा था.
He was in the poultry business. And how they welcomed me, each one.
और मैं याद करता हूँ कि वो सब महिलाओं मुझे कितनी स्वागत करते थे और कहते थे टॉमी आ गया, टॉमी आ गया. हर बुरी महिला मुझे पूछती थी कि बात करने के लिए.
One time three in one day.
एक दिन मैं तीन, कभी कभी दस, ग्यारह, बारह. मेरी बातें बहुत टेंडर है. मेरी आत्मा बहुत खुश है. हमें बहुत आशीर्वाद दी है म्यूजिक के लिए.
हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी प्रार्थना हमारे पास रहे. मैं एक छोटे किस्से से शुरू करूंगा, मैं जो मेरे विषय व्यतीत करेगा. एक जवान धनपति लिसा और जॉन एक नए इलाके में रहने आए थे. एक सुबह जब वो नाश्ता कर रहे थे, लिसा ने खिड़की से बाहर देखा और अपने पड़ोसों को कपड़े सुखाते पाया. वो कपड़े साफ नहीं है, लिसा ने बोला. हमारे पड़ोसों कपड़े साफ करना नहीं जानती. जॉन ने भी देखा मगर चुप रहा. हर बार जब उसकी पड़ोसे अपने कपड़े सुखाने जाती, लिसा वो बात बोलती. कुछ हफ्तों बाद लिसा ने देखा कि उसके पड़ोसों की आंगन में सुंदर और साफ कपड़े सूख रहे हैं. उसने अपने पति से कहा, देखो जॉन, आखिर में वो सही तरीके से धोना से गया, उसे एक कैसे. जॉन ने उत्तर दिया, अच्छा प्रिय, मेरे पास तुम्हारे लिए जवाब है. तुम्हें खुशी होगी जहाँ मैं आज सुबह जल उतर उठा जब खिड़कियों को धोया. आज रात मैं आपके साथ कुछ विचार बताना चाहूँगा कि क्यों हम इस दूसरे के किस नज़रिए से देखते हैं के बारे में. क्यों हम ऐसे खिड़की से देख रहे हैं जिसको सफ़ी की ज़रूरत है. हम दूसरों के ओर देखते हैं क्या देखते हैं, हम उनके बारे में क्या निर्णय बनाते हैं। उद्धारकर्ता ने कहा, दोष मत लगाओ, और कहता गया, तू क्यों अपने भाई की आंख के तीखे को देखता है और अपनी आंख का लकड़ी तुझे नहीं छुजाता।
But consider it's not the soiled window in your own house. None of us is.
हम में से कोई संपूर्ण नहीं, मैंने किसी को नहीं जाना जो अपने आप को संपूर्ण कहता हो, और फिर भी किसी कारण हमारे कमी के बावजूद हमारी आदत हो जाती है किसी के काम करने के ढंग या जो वो नहीं करता पर दोष लगाते हैं। वास्तव में कोई तरीका नहीं है किसी के दिल, विचार या परिस्थितियों को जानने का जो कुछ बोल रहा है या कर रहा है, जिसे कि हमें दोष लगाने का वजह मिले। 40 और 7 वर्ष पहले इसी महिला सम्मेलन में मुझे 12 देवियों की परिषद में सेवा प्रदान करने की नियुक्ति दी गई। उस समय में गिरजाघर के एक जनरल प्रवृत्ति समिति में सेवा प्रदान कर रहा था, और इसलिए मेरा नाम पुकारने से पहले मैं उसे प्रवृत्ति समिति के सदस्यों के साथ बैठा था जैसे मुझे करना था। हालांकि मेरी पत्नी नहीं जानती थी कि कहाँ बैठना है और इसके किसके साथ, और टैबरनकल में कोई बैठाने की जगह नहीं मिल रही थी। हमारी एक अच्छी मित्र जो एक जनरल ऑक्सिलरी बोर्ड के सदस्य थी और जो बोर्ड सदस्यों के लिए दिए गए जगह पर बैठी थी, ने बहन मानसून को अपने साथ बैठाया। यह महिला मेरे नियुक्ति के बारे में कुछ नहीं जानती थी जो थोड़ी देर में बतलाया जाएगा, मगर उसने बहन मानसून को देखा, उसकी चिंता को पहचाना और दया से उसे एक जगह दी। मेरे प्यारी पत्नी ने कृपया विहार से आराम पाई और आभारी थी। बैठे हुए हालांकि उसने जोर की फुसफुसाहट सुनी। अपने पीछे जब एक बोर्ड सदस्य अपना क्रोध जाहिर कर रहे थी आसपास के लोगों से कि उनके साथ का बोर्ड सदस्य के पास उतना हिम्मत थी कि वो एक गैर सदस्य को सिर्फ उनके लिए दिए गए जगह पर बताए। उसके दुर्व्यवहार की किसी ने माफी ना ली, चाहे जिसके किसी को भी वहां बताया गया हो। बल्कि मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूं कि कैसा उस महिला ने महसूस किया होगा जब उसे पता लगा कि वो अजनबी सबसे नई देवदत्ती की पत्नी है। न सिर्फ हम दूसरों के कार्य और शब्दों में दोष निकालने के लिए इच्छा चाहते हैं, मगर हमें ऐसे ही लोग दिखावट के जो दोष देते हैं। बाहरी रूप देकर दोष देने का अच्छा उदाहरण एक राष्ट्रीय पत्रिका में छपे लिखे में था है। एक महिला मेरी बैटल्स का घर अस्पताल के दरवाजे का आसमान सामने सड़क के उस पर स्थित था। उसका परिवार मुख्य मंजिल पर था और ऊपरी मंजिल पर अस्पताल के बाहर के मरीज बड़े पर रहते थे। एक शाम एक बहुत बुरा दिखने वाला आदमी उसके द्वार पर आया रात गुजारने के लिए। वो खुबड़ा और मुरझाया था और उसका चेहरा सूजने का कारण एक तरफा था, लाल और पतला। उसने कहा कि वो दोपहर से एक कमरा ढूंढ रहा था। मेरा अनुमान है कि मेरा चेहरा के कारण, उसने कहा, मैं जानता हूँ कि ये बहुत बुरा दिखता है। उसने कहा कि वो बाहर रखे गए ढोलने वाली कुर्सी पर सो लेंगे। उसे बात करते समय मेरी को लगा कि इस छोटे बूढ़े आदमी के शरीर में एक बहुत बड़ा दिल है। सोने के समय मेरी के पति ने एक पोर्टेबल हल्का खाट लगाया उस आदमी के लिए। जब उसने सुबह जांच की, कंबल अच्छी तरह से बिछे हुए और वो बाहर था। वो नाश्ता नहीं चाहता था, मगर अपने बस में जाने से पहले उसने पूछा कि वो अगले इलाज के समय वहाँ ठहर सकता है। मैंने तुम्हें कोई कष्ट नहीं दूंगा, उसने वादा किया। मैं कुर्सी में अच्छी तरह से सो सकता हूँ, मैंने कहा कि हो रह सकता है। उन सभी वर्षों में जब वो इलाज के लिए गया और मेरे के घर पर ठहरा, बुरा आदमी जो मछुआरे का काम करता था अपने साथ समुद्र में भोजन का, अपने बगीचे और सब्जियां ऊपर उपहार के रूप में लाता था। जब मेरी को ये अच्छे उपहार मिले, वो अक्सर अपने पड़ोसों के बात को याद करती है। जब वो बुरा दिखने वाला खबरा बुरा आदमी मेरे के घर से जा रहा था, मेरी जानती थी कभी कभार उन्होंने घर का खोई थी, मगर उसने सोचा ओ, अगर सिर्फ वो उन्हें पहचानते शायद उनके बीमारी आसान से समझ पाते। जब उस आदमी की मृत्यु हो चुकी थी, मेरी अपने एक सहेली के से मिलने गई जिसके पास एक पाठशाला था। अपने सहेली के फूलों के देखते देखते उसने एक सुंदर सोने के रंग का क्रिसेंथेमम फूल देखा, मगर आश्चर्य हुए उसके देख भर दबे पुराने मुरझाए बटली में देखकर। मेरे पास कम बतलियाँ थे और जानते हुए कि यह फूल कितना सुंदर होगा, मैं सोचा वो इस पुराने बतली में शुरू होना कर बुरा नहीं मांगेगा। मेरे मुस्कुराई जब उसने स्वर्ग में इसी ही मंजर की कल्पना की, यह खासतौर पर सुंदर है। वो इस छोटे बिगड़े शरीर में शुरुआत करने का बुरा नहीं मांगेगा, मगर वो तो बहुत पहला था और परमेश्वर के बगीचे में इसी सुंदर आत्मा कितना ऊंचा खड़ा होगा। ऊपर के दिखावा कितना धोखा दे सकता है, यह व्यक्ति का इतना कम माप उधारकर्ता ने बतलाया, मुंह देकर दोष ना लगाओ। ये महिला संस्था के सदस्य ने एक बार शिकायत कि जब एक अन्य महिला को उस संस्था का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया, उसने उस महिला के से कभी मिला ना था, मगर उसने उसके एक तस्वीर देखा और पसंद नहीं किया क्योंकि वो बहुत मोटी थी। उसने कहा इस संस्था के हजारों महिलाओं ने से जरूर कोई और बेहतर प्रतिनिधि चुना जा सकता था। सच में जिस महिला को चुना गया था प्रतिकारों के मोड़ने जैसे पतली नहीं थी, मगर जो उसे और उसके गुणों को जानते थे ने उसके तस्वीर से ज्यादा उसमें कुछ देखा। उस तस्वीर में जो नहीं दिखता था वो था एक भरोसेमंद और दयालु दोस्त, एक समझदार महिला जो प्रभु से प्रेम करती थी और वो उनके बच्चों से प्रेम और उनकी सेवा करती थी। कुछ ही शब्दों में तस्वीर में नहीं दिखा और असल में कौन थी। मैं पूछता हूँ अगर विचार भाव कर्म और आत्मा के पसंद शरीर पर दिखते, क्या उस महिला का चेहरा जिसने शिकायत की थी दोष लगाने वाली महिला से सुंदर होता। मेरे प्यारे बहनों, तुम में से हर एक अनुपम हो, तुम कई तरीकों से एक दूसरे से अलग हो। वहाँ हो है जो विवाहित है, कुछ अपने बच्चों से के साथ घर पर रहती है, कुछ घर से बाहर काम करती हो, कुछ को बच्चे अब साथ नहीं है, कुछ विवाहित है मगर जिनके पास बच्चे नहीं है, कुछ तालकशुदा है, कुछ जो विधवा है। तुम में से कई अविवाहित महिलाएं हैं, कुछ के पास कॉलेज की डिग्री है, कुछ के पास नहीं है। वहाँ हो है जो नवीनतम फैशन खरीद सकती है और वो जिनके पास सिर्फ एक अच्छा रविवार का कपड़ा है। ऐसे बनाते तो बहुत है, कैसे ऐसे बिनताएँ हमें एक दूसरे में दोष ढूंढने के लिए उत्साहती है। मदर टेरेसा एक कैथोलिक नन जो इंडिया के गरीबों के बीच अपने काफी जीवन कर्म करती रही ने ये सच्चाई बतलाई, अगर तुम लोगों में दोष निकालेंगे तुम्हारे पास उसके प्रेम करने से समय नहीं रहेगा। उधारकर्ता ने बतलाया मेरी आज्ञा ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मैं पूछता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं जैसे उद्धारकर्ता ने आज्ञा दी, अगर हम एक दूसरे में दोष निकालेंगे? और मैं जवाब देता हूँ, मदर थ्रेसा के साथ नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। देवदत्त जेम्स ने सिखलाया, अगर कोई तुम्हारे मध्य में धार्मिक दिखे और अपने जुबान को काबू ना करे मगर अपने ही दिल को धोखा दे, इस आदमी महिला का धर्म व्यर्थ है। दयालु का है क्या है? भविष्यवक्ता मोमन हमें सिखलाता है कि दयालु मसीह का सच्चा प्रेम है। लेमनास के लिए अपने आखिरी संदेश में मोरनाय ने घोषणा की, और अगर तुम्हारे पास दयालुता नहीं है तुम किसी भी तरह परमेश्वर के राज्य में बच नहीं सकते। मैं दयालुता है या मसीह का सच्चा प्रेम को बुरा विचार देने को और दोष लगाने पर विपरीत समझाता हूँ। दयालुता के बारे में कहता हूँ, मेरे मन में पीड़ित को सहायता देने का मतलब अपनी चीज़ों देना है, यह जरूर से उपयुक्त और ठीक है। आज रात हालांकि मेरे मन में वो दयालुता है जो अपने आप को दिखलाता है जब हम औरों को कर्मों के प्रति संचली और दयालुता रहते हैं। मेरे मन में वो दयालुता है जो हमें सहानुभूतिपूर्ण, रहमदिल और चंचल बनाता है, सिर्फ बीमारी और दुख और तकलीफ के समय नहीं पर औरों की कमजोरी या गलती के समय भी। एक बहुत बड़ी जरूरत है उस दयालुता की जो उन लोगों को सहायता देता है जिन्हें कोई देख नहीं सकते, आशा उनको जो निराश है, दुखी को सहायता दे सकती है। सच्चा दयालुता है जब प्रेम काम पर लग जाता है। दयालुता की जरूरत सभी जगह है।
The need for charity is everywhere.
जरूरत है उस दयालुता की जो औरों के दुखों को सुनकर यह बतलाता कर संतुष्टि नहीं पाना चाहता, सिर्फ उस समय जब ऐसा करने से अभाजी को कुछ लाभ होता होगा। अमेरिकन शिक्षक और नेता होरेस मैन ने एक बार कहा, दुख में दया दिखाना मानवीय है, उसे छुटकारा दिलाना परमेश्वर की तरह होना। दयालुता है ऐसे व्यक्ति के साथ धीरे से काम लेना जिसने हमें निराश किया है। हमें जल्द बुरा नहीं मानना है, उसका मतलब है कमजोरियों और गलतियों को अपनाना। उसका मतलब है लोगों को उसी तरह अपनाना जैसे वो है। उसका मतलब है शरीर के दिखावे से आगे देखना उन गुणों को जो समय के साथ कम नहीं होते। उसका मतलब है सबको अलग करने के उमंग को रोकना। दयालु है जब सच्चे द्वारा करने वाले शिक्षक हर महीने, हर वर्ष, हर दुखी जरूरतमंद बहन के पास आते हैं। वो देखता है जब एक बुरी विधवा को याद किया जाता और वोट के गतिविधियों में यह लाया जाता है और सहायक संस्था के गतिविधियों में भी। वो महसूस होता है जब सहायक संस्था में बैठे हुए बहन को निमंत्रण मिलता है, आओ हमारे पास बैठ जाओ। कई छोटे छोटे तरीकों से तुम सब दयालुता का उदाहरण हो। जीवन किसी के लिए संपूर्ण नहीं है। एक दूसरे में दोष निकालने और उनका बुरा बोलने के जगह हमारे में मसीह का सच्चा प्रेम हो उन साथ चलने वाले के लिए इस जीवन के यात्रा में। हमें ये पहचानना चाहिए कि हम सब पूरी कोशिश में लगे हैं उन चुनौतियों का सामना करने के लिए जो हमारे ओर आते हैं। दयालुता का अर्थ है सबसे ऊंचा, श्रेष्ठ और शक्तिशाली प्रेम है, मसीह का सच्चा प्रेम है, और ये अंतिम दिन को जिसके पास मिलेगा उसका भला होगा। दयालुता कभी टलता नहीं, आशा है कि ये हमेशा से कयाम सहायक संस्था उद्देश्य ये जन्मों की सच्चाई तुम्हें हर काम में मार्गदर्शन आशा है ये तुम्हारे आत्मा तक पहुँचाए और तुम्हारे सभी सच और कार्य तक पहुँचाए। मैं अपना प्रेम तुमसे व्यतीत करता हूँ मेरे बहनों और प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग के आशीर्वाद तुम्हारे हो हमेशा के लिए यीशु मसीह के नाम से आमीन।
हमारे प्रिय परमेश्वर, हम बहुत खुश हैं कि हमने प्यार की आत्मा हमने महसूस की इस शाम को. हम बहुत आभारी हैं आपकी बेटे की एग्जाम्पल और जिंदगी. हम आभारी हैं.
For the words of a prophet.
Prophet ki baaton ke liye.
And inspired Relief Society leaders.
Aur hamari inspired Mahila Shanshak ki pradhan ki.
We humbly pray.
Hum prarthna karte hain aapki grace aur aashirwadon ke liye. Ki hum Relief Society behno.
That we truly may seek to become women. Of a sound understanding.
ढूंढे कि हम महिलाओं समझने के लिए कि हम आत्मा से गाइड
हो,
जैसे हम ढूंढते हैं.
Become women who
महिलाओं
provide a refuge
जो रेफ्यूज देते हैं हमारे घरों में, हमारे घरों में प्यार और शांति के लिए और शक्ति और विश्वास के लिए. कि हम अपने बच्चों को पालन पोषण किए जो आपसे प्यार करते हैं और सेवा करने के लिए.
We pray that
हम प्रार्थना करते हैं कि
we may become women of true
हम महिला बने जो सच्चाई के लिए
compassion and love, seeking diligently to
हमेशा दूसरों को सेवा करने के लिए.
We express deep gratitude.
हम आभारी हैं कि हम
members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
यीशु मसीह के
गिरजाघर के हैं. That we might always remember.
कि हम हमेशा याद रखें कि हम आपके covenant लोग हैं जो आभारी हैं, प्यार हैं और humility हैं. और हम ये सब से बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में. आमीन.